Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। इंडिजीनियस वॉइस टू पार्लियामेंट के पक्ष या विपक्ष में आधिकारिक अभियान के पहले दिन की शुरुआत करने के लिए सैकड़ों वॉलंटियर्स सड़कों पर उतरते नजर आए। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने जनमत संग्रह की तारीख 14 अक्टूबर घोषित कर दी है। संसद में स्वदेशी आवास के लिए जनमत संग्रह की तारीख की घोषणा के बाद मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वॉइस टू पार्लियामेंट का समर्थन करने वाले मतदाताओं का मानना है कि संसद में वॉइस आने से कानून प्रणाली, स्वास्थ्य देखभाल और भूमि अधिकारों में स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए बेहतर परिणाम देखे जाएंगे। जनमत संग्रह की तारीख निर्धारित होने के साथ कोई भी प्रचारक अनिर्णित मतदाताओं पर जीत हासिल करने के बारे में आश्वस्त नहीं है। स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए गठबंधन प्रवक्ता सीनेटर जेसिंटा प्राइस का कहना है कि संसद में स्वदेशी सांसदों की मौजूदगी के साथ स्वदेशी सलाहकार निकाय की कोई आवश्यकता नहीं है। एक संसदीय जांच से ऐसा पता चला है कि रेंटल क्राइसिस ऑस्ट्रेलियाई लोगों की बढ़ती संख्या को बेघर कर रहा है। होमलेसनेस ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी केट कॉल्विन का कहना है कि दिसंबर 2022 के बाद से सेवाओं तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या में 7.5% की वृद्धि हुई है। इन 96,000 लोगों में से 83% को आवास या वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का ऊर्जा बाजार नियामक ऊर्जा आपूर्ति की चेतावनी देते हुए बिजली के नए नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल स्रोतों में तत्काल निवेश का आह्वान कर रहा है। ये चेतावनी ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट ऑपरेटर की एक नई रिपोर्ट में दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय बिजली बाजार के लिए उसके नवीनतम 10 वर्षीय दृष्टिकोण का विवरण भी शामिल है। वर्कप्लेस रिलेशंस मंत्री टोनी बर्क औद्योगिक संबंध कानूनों की एक नई श्रृंखला जारी करेंगे, जिसके चलते गिग वर्कर्स को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टिप्स पर निर्भर होने से रोका जाएगा। राइड शेयर ड्राइवर्स और फूड डिलीवरी राइडर्स उन हजारों श्रमिकों में से हैं जो इन परिवर्तनों से प्रभावित होंगे, जिसमें अनुचित निष्क्रियता से डीएक्टिवेशन और न्यूनतम वेतन दरों को लागू करना भी शामिल होगा। आजसक क्षेत्र में बढ़ते मानवीय संकट पर चल रही चिंताओं के बीच पेरिस के मेयर इस सप्ताह आर्मेनिया ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं। पिछले 7 हफ्तों से आजसक क्षेत्र में रहने वाले 1,20,000 स्वदेशी आर्मेनियाई लोगों को लाचिन कॉरिडोर में अजरबैजान की सेना द्वारा भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री की सप्लाई से वंचित रखा गया है। वहीं बात करें भारत की, तो संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना OCCRP ने गुरुवार को दावा किया है कि मॉरिशस स्थित अपारदर्शी फंडों ने अडानी के शेयर में लाखों डॉलर का निवेश किया। जॉर्ज सोरेस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जैसे संगठनों की ओर से वित्त पोषित संगठन द्वारा ताजा आरोप ऐसे समय लगाए गए हैं जब कुछ ही महीने पहले अमरीकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की ओर से संचालित बंदरगाह से ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले समूह पर लेखा धोखाधड़ी, स्टॉक मूल्यों में हेराफेर और टैक्स संबंधित अनुचित उपयोगों के आरोप लगाए थे। इस खुलासे के बाद अडानी समूह के शेयरों में 150 अरब मिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। इसी के साथ आज का न्यूज फ्लैश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।